हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 18, टेक्स्ट नंबर 45। कृपया इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कह रहे हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम् लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम् यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम् लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम् यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम् लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम् यथा विन्दति तच्छृणु। एक बार फिर, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम् लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम् यथा विन्दति तच्छृणु। शब्दों का अर्थ देखिए। स्वे स्वे मतलब अपने अपने, कर्मणि यानी कर्म में, अभिरतः संलग्न यानी जो भगवान ने अभी ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्रों के जो भी कर्म बताए हैं तो भगवान उनके विषय में बता रहे हैं। अपने अपने कर्मों में लगे हुए, स्वे स्वे कर्मण भिरतः संसिद्धिम लभते पराम। संसिद्धिम का मतलब होता है सिद्धि को, लभते मतलब प्राप्त करता है, पराम सॉरी नरह, नरह का मतलब होता है मनुष्य, यानी मनुष्य जो होता है वो अपने अपने कार्य को करते हुए सिद्धि को प्राप्त करता है। और आगे भगवान बहुत ही सुंदर शब्द बता रहे हैं, स्वकर्म निरतः सिद्धिम। स्वकर्म मतलब अपने कर्म में निरतः लगा हुआ सिद्धिम, सिद्धि को यथा विन्दति जिस प्रकार प्राप्त करता है, तत् यथा विन्दति यथा माना जिस प्रकार, विन्दति माना प्राप्त करता है, तत् शृणु। अब भगवान बोल रहे, आपको नहीं पता ना कि ब्राह्मण अपना कार्य करते हुए, क्षत्रिय अपना कार्य करते हुए, वैश्य अपना कार्य करते हुए और शूद्र अपना कार्य करते हुए सिद्धि को कैसे, परम सिद्धि को कैसे प्राप्त करता है, संसिद्धिम लभते नरः, सिद्धि को कैसे प्राप्त करेगा वो तुम्हें नहीं खबर है। अब क्या करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। विन्दति तच्छृणु, विन्दति का मतलब होता है कैसे प्राप्त करता है, तच्छृणु आप सुनो, मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करता है। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान को श्रवण एवं ग्रहण करने के लिए आध्यात्मिक कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उनका पूरा पूरा प्राप्त फल प्राप्त हो, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహయం దదాతి స్వపదాంతికం. వందే అహం శ్రీగురుః శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణరఘునాథ వితం తం సజీవం సాత్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖ వితాశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపేశ గోపిక కాంత శ్రీరాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచనం గౌరంగే శ్రీరాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభాను సూతదేవీ ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభయస్య కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితనాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైతం గదాధారం శివాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. శ్రీమద్ భగవద్గీత మాత కీ జయ హో. అథ అష్టదశోధ్యాయ ఉపసంహార సన్యాస్ కి సిద్ధి. శ్లోక్ నంబర్ 45. భగవాన్ కే రహే హై స్వే స్వే కర్మణ్య భిరతః సంసిద్ధి లభతే నరః స్వకర్మ నిరతః సిద్ధి యథా విందతి తచ్చును. यानी भगवान ने कहा, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, यानी सिद्ध हो सकता है. अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जाता है. यानी भगवान श्री कृष्ण हमें ये बता रहे हैं कि यदि आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसका रास्ता जाता है आपके कर्मों के, जो आपके कर्मों के अनुसार, जो आपके स्वभाव के अनुसार जो आपको कर्म करने हैं ना. जैसे आप अपने स्वभाव के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गुण और स्वभाव के अनुसार बनते हो, अब उसके साथ साथ चलते 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 आप किस प्रकार सिद्धि को प्राप्त कर सकोगे. वास्तव में इन चार वर्ण और आश्रमों का उद्देश्य सहयोग है, भेदभाव नहीं है. ये सत्य है कि संसार में जातिवाद का जो ये डिफरेंस, ये जो बताया गया है, उसमें बहुत सारा जाति मतलब डिस्टर्बेंस बहुत सारी क्रिएट हो गई. लेकिन ये जाति पद्धति के कारण नहीं हुआ. ये जो स्वभाव के अनुसार आपको कर्म करना है, वो तो आपको कोई अगर जातिवाद का ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको मिलता है, नहीं भी मिलता है, तो भी आप अपने गुणों और स्वभाव के अनुसार वही कार्य करोगे. अब देखो, जैसे अर्जुन क्षत्रिय था, उसको गुण उसका अंदर है क्षत्रिय का. क्या है कि उसको नेतृत्व करना है, उसको राजा बनने का गुण है उसके अंदर। अब वो क्या बोल रहा है कि मैं राजा नहीं बनना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं भीख मांग के खाता हूँ। ठीक है, वास्तव में जो ब्राह्मण होता है ना, उसको भीख मांग के खाना है। जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो भिक्षाटन करता है और खाता है, ठीक है, लेकिन क्षत्रिय क्या करता है, वो कर वसूल करता है, और वो भी किसी की चाकरी नहीं करता, व्यापार नहीं करता है, लेकिन क्योंकि राजा होता है वो टैक्स लेता है, उसके बाद खाता है। अब उसका क्षत्रिय का स्वभाव अलग होता है, मांगने का स्वभाव अलग होता है। ब्राह्मण क्या बोलता है, भिक्षां देहि, और क्षत्रिय क्या बोलता है, टैक्स निकालो। और अगर कभी कोई टैक्स नहीं निकालता है तो फिर क्षत्रिय निकालता है अपना हथियार, बोलता है नहीं दे रहे हो टैक्स आप। तो उसी तरह से वो अगर ब्राह्मण का कार्य भी करेगा ना, तो भी अपना स्वभाव चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव अंदर क्षत्रिय का है। तो वो अगर उसको भिक्षा भी नहीं देंगे ना, तो वो फिर तभी भी उसका खून खोल उठेगा कि मेरे को नहीं देता, मना करता। तो इस तरह से, क्योंकि आपके अंदर जो क्षमता है, जो गुण है, उसके अनुसार आपको कार्य करना पड़ेगा। तो यही से, इसी से क्या होगा, समाज की व्यवस्था चलेगी। अगर कोई संसार, अभी हम लोग सोचें संसार में कोई भी ब्राह्मण नहीं हो, सब क्षत्रिय बन जाए, संसार चलेगा? उनको, क्षत्रिय को शिक्षा देने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर सारा समाज उलट। खाली सारे ब्राह्मण बन जाए और वैश्य कोई नहीं हो, कोई वैश्य नहीं हो यानी कि कोई कृषि नहीं करता है, समझो कोई खेती बाड़ी नहीं करता, गौ रक्षण कोई नहीं करता। गौ की रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर कृषि गौ रक्ष वाणिज्य, गायों की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का स्वभाव है। क्यों है ये? क्योंकि अगर क्षत्रिय खाली, सॉरी वैश्य जो है वो खाली अपना कारोबार करता रहेगा और धन कमाता रहेगा, तो उसमें क्या होगा, उसका लालच बढ़ेगा। लेकिन जब वो गौ रक्षा करेंगे और ना खेती करते हैं और परिचर्यात्मकम, ग्रस्त और क्षत्रियों के लिए है दान देना, तो फिर अगर वो दान देते हैं तो क्या होता है, उनकी लालच जो है वो खत्म होती है, उसके अंदर जो आसक्ति है ना धन के अंदर, वो खत्म होती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो अगर हम नहीं करते, मतलब ये अगर संस्कृति हमें नहीं दी गई होती ना, तो भी ये है, ये होना है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस में जाएं, तो विश्व की जितनी भी प्राचीन संस्कृति को हम देखें, तो बहुत सारी पहले संस्कृतिज होती थी, जैसे ग्रीक संस्कृति होती थी, रोमन और ईरानियन, बहुत सारी संस्कृत। लेकिन आज अगर देखते हैं हम अपने इतिहास को खोल के, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति ही बाकी है, सिर्फ भारतीय संस्कृति, क्योंकि ये फैक्ट पर, रियलिटी पर आधारित है। अगर ये संस्कृति शोषण पर आधारित होती, यानी शोषण का क्या मतलब होता है, कि उच्च वर्ण के लोग नीचे वर्ण को, वर्ण के लोगों को दबा कर कार्य करते हैं, जैसे अगर है ना ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को, या शूद्र को, ये तीनों दूसरे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो है वो शूद्रों को दबा कर कार्य करते होते, उनका शोषण किया होता, तो फिर ये संस्कृति कभी टिकती नहीं, क्योंकि शोषण पर आधारित संस्कृति कभी भी ज्यादा समय तक नहीं टिकती है। क्योंकि जो शोषित वर्ण होता है, जिस पर दबाव डाला जाता है, जिसको ना नीचे, मतलब बहुत ज्यादा जिसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो जो शोषित वर्ग होता है वो क्या करता है, क्रांति लेकर आता है, प्रतिकार अपने अंदर, यानी रेवोल्यूशन उसके अंदर आता है कि नहीं, मुझे उन्होंने ऐसा किया। उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा बंदा निकलता है, शूद्रों के अंदर या फिर वैश्यों के अंदर, जो उनके साथ प्रतिकार करते हैं, उनके साथ क्रांति करते, तो फिर क्या होता है कि वो समाज टिक नहीं सकता। लेकिन आज तक हम देखते हैं भारतीय संस्कृति टिकी हुई है। इसका मतलब होता है, इस भारतीय संस्कृति में हर एक वर्ण को, जितने भी हैं ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनको अपना एक आत्मसम्मान दिया गया है। वैश्य को और क्षुद्र को भी और क्षत्रिय को भी सबका सम्मान किया जाता है, तभी उसी हिसाब से पूरा पूरा सम्मान मिल रहा है, उसी हिसाब से सब अपना अपना कार्य सही कर रहे हैं, इसलिए संसार की जो व्यवस्था है वो सही सही जा रही है। लेकिन अब किसी किसी ने जैसे गलत तरीके से इसको लिया, उसका दुरुपयोग किया, वो इसलिए कि ना उन्होंने ना शास्त्रों को गलत तरीके से बताया कि ब्राह्मण का संतान ब्राह्मण होगा, और इस तरह से फिर शूद्रों के साथ उनके साथ ऐसा व्यवहार। ये वास्तव में ये वर्ण आश्रम संस्कृत की बुराई नहीं है, ये उन लोगों की बुराई है जिन्होंने इसको गलत तरीके से यूज किया है। क्योंकि वर्णाश्रम का जो ये धर्म है उसमें हर एक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने को मौका मिल रहा है। आपका स्वभाव है कारोबार करने का, आपका स्वभाव है बिजनेस करने का, आपका स्वभाव है गौ रक्षण करने का, आपका स्वभाव है खेती करने का, और मैं आपको जबरदस्ती बोलूंगी नहीं आपको राजा बनना पड़ेगा। आप राजा के गुण नहीं है आपके अंदर, राजा के अंदर शौर्यम तेजो दृति दाक्षम ये सारे गुण होने चाहिए। युद्ध चाप्य पलायन, युद्ध से दूर ना भागना, दानम ईश्वरम, ये सारे गुण होने चाहिए। और आपके आपके अंदर तो बिल्कुल दूसरे गुण है, तो फिर आप वो कार्य कैसे कर सकते हो? तो वर्णाश्रम धर्म में आप अपने गुणों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार आपको कार्य करने का मौका मिलता है। ये जो वर्णाश्रम धर्म जो है, इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ये, इट इज कॉपरेशन के जिस तरह से सहयोग मिल रहा है आपको, आपके स्वभाव के अनुसार भेदभाव नहीं है इसके अंदर। सब अपने अपने कर्म करने से, अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग पीछे देखें जितने भी ब्राह्मण के हम लोग अगर गुणों को देखें, क्षमोदमः तपः शौचम् क्षान्तिराजवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता। इसमें ये नहीं बताया गया भक्ति, ब्राह्मण का भी गुण भक्ति नहीं है, उसका उसके अंदर क्या है, शांति प्रियता है, वो खुद से उसका स्वभाव होगा, आत्मसंयम करेगा, पवित्रता होगी उसके अंदर, तपस्या होगी, लेकिन भक्ति या प्रेम कहीं नहीं लिखा हो गया। उसी तरह से क्षत्रिय के अंदर गुणों के अंदर भी और वैश्य और शूद्र के अंदर भी कोई भगवान की भक्ति या भगवान से प्रेम का कोई भी गुण नहीं लिखा हुआ। उसके अंदर स्वाभाविक एक गुण होता है कि वो ये कार्य करने वाला है, ठीक है। अब आज के श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। सब अपने अपने कार्य, जब क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने का मौका मिलता है, फिर अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते 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 फिर वो व्यक्ति आगे प्रगति करता है, क्योंकि सब अपने अपने कर्म से, अब खाली हम अपना अपना कर्म करते रहेंगे तो उससे आध्यात्मिकता में उन्नति नहीं होगी। लेकिन अब उन्नति कैसे होगी, जब उसमें भक्ति का भाव, क्या बता, स्वकर्म निरतः सिद्धि सिद्धि तथा विन्दति तत्स्वं, भगवान बोलते हैं वो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह होगा। क्योंकि वास्तव में ये सारे जो कर्म हैं वो भौतिक स्तर पर हैं, ये सिर्फ भौतिक स्तर पर आपके स्वभाव और गुणों के अनुसार और कर्मों के अनुसार आपको स्वभाव मिला है, उसके अनुसार आप कार्य कर रहे हो, लेकिन उसमें उन्नति कैसे होगी वो भगवान बोल रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो अभी भगवान बता रहे हैं श्लोक नंबर 46 में। भगवान क्या कह रहे हैं श्लोक नंबर 46, भगवान कहते हैं यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वं इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च संसिद्धिं सिद्धिं विन्दति मानवः। रॉन्ग हो गया ना, वापिस से पढ़ते। यतः प्रवृत्त भूतानां येन सर्वं इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वं इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य संसिद्धिं सिद्धिं विन्दति मानवः। एक बार फिर सही तरह से पढ़ो। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वं इदं ततं स्वकर्मणा समभ्यर्ष्य सिद्धिं विन्दति मानवः। ठीक है, यत्तः प्रवृत्तिर भूताना, बहुत ही सुंदर श्लोक है। और अभी तक जो भगवान श्री कृष्ण ने इतने सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रम का इतना बड़ा कांड किया, उसके करने की क्या वजह थी, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि क्या करना है वास्तव में, आप अपने अपने कार्य करते हुए किस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त होगे। भगवान कहते हैं यत्तः का मतलब है, शब्दों का अर्थ देखिए, यत्तः मतलब जिससे, प्रवृत्तिर मतलब उद्भव, स्टार्ट किसका स्टार्ट हुआ है, भूतानाम समस्त जीवों का। अब जिसने सारे जीवों को स्टार्ट किया है, सारे जीवों को उत्पन्न किया है, सारे जीवों का जो उद्भव प्रवृत्ति जिसने बनाया है सबको, और आगे भगवान कहते हैं येन सर्वम इदम ततम, येन मना जिससे, सर्वम मतलब समस्त, इदम मना ये, ततम व्याप्त है, यानी कि एक वो जिसने ये सारा संसार और सारे भूत प्राणी बनाए हैं, और दूसरा ये न सर्वम इदम ततम जिससे ये सब कुछ चल रहा है, जिससे ये सारा कार्यक्रम जो भगवान की प्रकृति जिसने बनाई है और जिससे के जरिए ये सारा व्याप्त है। और आगे भगवान बहुत ही सुंदर शब्द कह रहे हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, स्वकर्म कर्मणा का मतलब होता है अपने अपने कर्म से, तमा मतलब उसको किसको, जिसने ये पूरे संसार में जितने भी जीव प्राणी हैं उसको बनाया है, और जिससे ये समस्त प्रकृति व्याप्त है, जिसको जो ये इसको चला रहा है, स्वकर्मा मतलब अपने अपने कार्य करते हुए, तम अभ्यर्च्य उसको, अभ्यर्च्य मतलब पूजा करो। अभी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमें ये बता रहे हैं कि खाली आपको आपके स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं करना है, जीवित रहने के लिए बस जीने के लिए कार्य नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य अपने अपने कार्य करते हुए उसकी पूजा करनी है, सिद्धिम उससे क्या होगा, सिद्धिम विन्दति मानवा, सिद्धि मतलब सिद्धि को, विन्दति मतलब प्राप्त करता है मानवा मतलब मनुष्य। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अपने अपने कर्म करने आपको, और उसके साथ साथ क्या करना है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य उसकी पूजा करनी है, सिद्धिम विन्दति मानवा, इस तरह से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि जो आप अपने कर्म कर रहे हो ना वो सब भौतिक धरातल पर है। अब भौतिक धरातल पर होंगे ना, जैसे ब्राह्मण अपना कार्य, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी में भी भक्ति नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया, आज के श्लोक में क्या कहा, तमभ्यर्च्य, अभ्यर्च मतलब पूजा। अब भक्ति की बात कब आई है कि ये सारे जितने भी वर्ण हम बता रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उन सबको क्या करना है, तमभ्यर्च करना है, भगवान की, उस भगवान की भक्ति करनी, किसकी करनी, अब इस श्लोक को देखिए, स्वकर्मणा तमभ्यर्च उसकी पूजा करनी, किसकी, जिसका बारे में ऊपर बताया गया, यत्तः प्रवृत्ति भूतानाम जिससे संपूर्ण जगत बना है। अब किससे बना है वो भगवान ने पहले बता दिया होगा, तभी भगवान श्री कृष्ण अभी संक्षिप्त में बता रहे हैं। कब बताया ये, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में काफी जगहों पे बताया है, लेकिन अगर हम लोग देखें 9.8 में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम्, भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। अर्थात भगवान कहते हैं संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने बताया पहले ही के ये सब संसार जो यहाँ पर पहली बात बताई ना, यतः प्रवृत्तिर भूतानां, जिससे यह सारा संसार उद्भूत होता है, जिसने ये सब कुछ बनाया है उसकी, और आगे ये न सर्वमिदं ततम, वो कौन इसको चला रहा है, वो उसका आंसर भगवान श्री कृष्ण देते हैं 9.10 में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौनते जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजन और विनष्ट होता रहता है, यानी कि मेरे इशारों पर चलता है। ये जो संसार को बनाया भी मैंने है, भगवान कहते हैं, और मेरे ही मायाधिक्षण प्रकृति, मेरी आंख के इशारे से यह संसार चल रहा है। तो इसी चीज के लिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरी लाइन का फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ड्स को अगर हम लोग ऊपर वाली लाइन के साथ टच करेंगे, ठीक है, उसमें क्या लिखा है, स्वकर्माणा तमभ्यर्च, अपने अपने कार्य करते हुए पूजा करनी है। किसकी करनी है, यतः प्रवृत्तिर भूतानां, जिसने पूरी संसार को बनाया है, और ये न सर्वमिदं ततम, जो इसको चला रहा है। और आगे क्या कहा भगवान ने, सिद्धिम विन्दति मानवा, मानवा कहते हैं मनुष्य को, सिद्धिम विन्दति माना इस तरह से मनुष्य अपना कार्य करते हुए, ठीक है, पहले बोला ना अपने अपने कार्य करते रहो, और कार्य करते हुए आपको क्या करना है, उस भगवान की पूजा करनी है, उससे क्या होगा, आपको सिद्धि प्राप्त होगी। यहाँ से एक बात और भी हमें समझ में आती है, कुछ लोग क्या कहते हैं, इसी श्लोक को कोट करके उसको रॉन्ग करके बताते हैं, कहते हैं कर्म ही पूजा है, यानी कि जो कर्म है वही पूजा है, अलग से पूजा नहीं है। स्वकर्मणा तमभ्यच, हमारे कर्म ही हमारी पूजा है, और वही करने से हमें सिद्धि मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं भगवान ने कहा, यहाँ पर कहा है यतः प्रवृत्तिर भूतानां, जिसने इस संसार को बनाया है, ये न सर्वमिदं ततम, और जो इस संसार को चला रहा है, सकर्मा तमभ्यच, अपने कर्म करो और उसकी पूजा करो, इससे तुमको, अगर कर्म ही पूजा होता तो सबसे बड़ा जो सिद्धि है ना, उसको पता है किसको मिलती, घरे को मिलती, क्योंकि गधा जो है ना वो खाली कर्म ही करता रहता है सारा दिन, सबसे ज्यादा घरों की तरह, जो भी ज्यादा काम भी करेगा ना उसको भी बोलते हैं हम गधों की तरह कर्म करता रहता है सारा दिन, गधों की तरह काम करता रहता है। तो इसी तरह से कर्म पूजा नहीं है, कुछ लोग ऐसे अपने शॉप के बाहर लिखते भी है, दुकान मेरा मंदिर है, और ग्राहक मेरा भगवान है, और मतलब सेल करना, सेलिंग मेरी पूजा है, यानी कि यही मेरा कारोबार जो है वो मेरी भक्ति है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। लोग क्या करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता से श्लोक लेते हैं और उसका गलत गलत उपयोग करके बताते हैं। वास्तव में भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं यतः प्रवृत्तिर भूतानां, जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, और ये न सर्वमिदं ततम, जिससे यह संसार कायम है, व्यवस्थित सारी चल रही है, और स्वकर्माणा तमभ्यर्च, अपने अपने कार्य करो, लेकिन उसकी पूजा के लिए अलग से टाइम निकालो। जैसे हम लोग मंगला आरती के लिए, या अपनी चैंटिंग के लिए, या फिर शास्त्र अध्ययन करने के लिए, या अर्चा विग्रह की पूजा के लिए अलग से टाइम निकालते ना, तो ऐसे भगवान ने कहा स्वकर्माणा, अपना कार्य करो, तमभ्यर्च, उसकी पूजा करो, इस तरह से क्या होगा, संसिद्धिम, सिद्धिम वंदति मानवा, मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होगी। वो कैसे होगा, क्योंकि अपना अपना कार्य करते करते जब भक्ति करेंगे तो भगवान से संबंध स्थापित हो जाएगा। वास्तव में जीव का शाश्वत संबंध भगवान से है, और यदि हम भक्ति का कार्य उसके अंदर, अपने कार्यों के अंदर सम्मिलित नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा कि भगवान के साथ हमारा कोई संबंध स्थापित नहीं होगा, तो फिर हम कभी सिद्धि प्राप्त, क्योंकि वास्तविक सिद्धि तो कृष्ण प्राप्ति है, लेकिन क्योंकि अब वास्तविक भक्ति का अर्थ क्या है पता है, भक्ति का अर्थ ये कार्य नहीं है, भक्ति का अर्थ है हृदय भगवान को अर्पित करना, हृदय के अंदर भगवान को स्थापित करना। लेकिन भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्ष, आप अपने कर्मों को मेरे अंदर लगाओ। क्यों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपना हृदय भगवान को अर्पित नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी बहुत सी भौतिक इच्छाएं होती हैं, भौतिक आसक्ति होती है, भौतिक कार्यों में हमारी लिप्त होते हैं ना, इसलिए हम अपने कार्य करना पसंद करते हैं, अपने कार्यों में आसक्ति होती है, रुचि होती है, इसलिए हृदय को भगवान के अंदर नहीं लगा सकते, क्योंकि हृदय अपने कार्य में लगा हुआ होता है। फिर भगवान क्या कहते हैं, स्वकर्माणा तमभ्यर्च, अपने कार्य करो। क्यों, क्योंकि इफ यू कांट ऑफर योर हार्ट टू गॉड देन ऑफर व्हाट इज इन योर हार्ट टू गॉड. आपके आप यदि अपने हृदय को भगवान को अर्पित नहीं कर सकते हो तो फिर क्या करो, जो आपके हृदय में है यानी जो कार्य जिससे आप आसक्ति है अपने कर्मों से. हर किसी को अपने कर्मों से आसक्ति होती है. वैश्य को पूछो अपनी दुकान से आसक्ति होगी, क्षत्रिय को पूछो अपने शस्त्र से आसक्ति होगी, ब्राह्मण को पूछो अपने शास्त्र से आसक्ति होगी, अपने यज्ञ इत्यादि कार्य से. जितना आनंद ब्राह्मण को यज्ञ करने में आता है ना, यज्ञ करने में या प्रचार करने में आता है ना, उतना ही आनंद क्षत्रिय को युद्ध करने में आता है, और वैश्य को अपना कारोबार करने में आता है, और शूद्र को अपना सर्विस करने में आता है. तो ये आनंद उसको आ रहा है ना, तो भगवान ने कहा अपना कार्य करो. चलो ठीक है, तुम इसमें तो आनंद आ रहा है तो अपना कार्य करो, लेकिन साथ साथ में स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, उसकी भक्ति भी करो जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने ये सारी व्यवस्था बनाई है. अनुवाद देखिए, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है. भगवान यहाँ पर क्लियर करते हैं कि आप अपना कार्य भी करो और साथ में उसकी भक्ति करो, उस भगवान की उपासना करो, तो तुम पूर्णता प्राप्त करोगे. धीरे 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 आपके हृदय में वो भक्ति का बीज जब बो दिया जाएगा तो वो भक्ति का बीज एक दिन वृक्ष बन जाएगा और आप पूर्णता प्राप्त करोगे यानी सिद्धि प्राप्त होगी. श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय हो. श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है कि सारे जीव परमेश्वर के भिन्न अंश हैं. इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि है. कब बताया, 15 चैप्टर के श्लोक नंबर 7, हमारा हम सबका प्रिय श्लोक है. भगवान कहते हैं मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, कि समस्त जीव जो है वो मेरे अंश हैं, जीव सनातन है और मेरे अंश है. तो इसी चीज को श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सारे जीव परमेश्वर के भिन्न अंश हैं और परमेश्वर सभी जीवों के आदि हैं. जी भगवान ने भगवान के जरिए से ही सब आए. वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है. वेदांत सूत्र में कहा जन्मादस्य यतोन्वयादि परतस् चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट. ये भगवान श्री कृष्ण, ये कब कहा गया वेदांत सूत्र में, वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 1 में ये सब बताया है कि वही अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है, कि सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हुआ है. जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है. 7.5 में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अपरेया इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूता महाबाहो धारयते जगत. के पहले मैंने आपको बताई पृथ्वी जल अग्नि वायु मनोबुद्धि एवच, ये सब मेरी अपरा प्रकृति है और इसके अतिरिक्त जीव जो है वो मेरी परा प्रकृति है. इन दोनों के विषय में बताया जो कि दो शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी, और इन दो शक्तियों के द्वारा भगवान हर जगह पर व्याप्त है. अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करें. अब यहाँ पर क्योंकि भगवान ने क्या बताया है यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम, जो संसार जिसने बनाया है और जो इसको व्याप्त करता है उसकी पूजा करनी है. तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें बता रहे अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित उनकी पूजा करें. सामान्यतया वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंग शक्ति समेत करते हैं. उनकी बहिरंग शक्ति उनकी अंतरंग शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है. अब बहिरंग शक्ति क्या है, ये संसार ये माया, और अंतरंग शक्ति भगवान की जो भगवान से रिलेटेड है, भगवान के भगवान का धाम, भगवान की आराधनी शक्ति, भगवान का मतलब नाम गुण लीला, ये सब अंतरंग शक्ति है. तो आगे कहते हैं बहिरंग शक्ति पृष्ठभूमि है, ये असल में उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति की विकृत प्रतिबिंब है. ये उनका छाया, यानी कि जैसे हम लोगों ने 15वें अध्याय में कैसे पढ़ा था कि ऊर्ध्वमूलम मदशाखम, कि वास्तविक जो जी, वास्तविक जो प्रकृति है, वास्तविक जो दुनिया है, वास्तविक जो भगवान का लोक है वो ऊपर है, लेकिन ये संसार क्या है, भौतिक प्रकृति, उसका प्रतिबिंब है। तो यही बता रहे हैं कि बहिरंगा शक्ति जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति की छाया है। हालांकि छाया है, पृष्ठभूमि है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तो हमें यही कहा गया ना कि यतः प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं ततः, जिससे संसार बना है और जो इसको पालन कर रहा है उसकी पूजा करो। तो अब ये पृष्ठभूमि है, फिर भी छाया है, फिर भी जिसने इसको बनाया है उसके विषय में ही कहा है। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी इस चीज को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्ण अंश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। इसलिए हम बोलते हैं ना इस उपनिषद का श्लोक नंबर 1, पूर्णमद पूर्णमिदम, वो भगवान वहां पर भी पूर्ण है, यहाँ पर भी अंतरंगा शक्ति में भी भगवान की पूर्ण है, पूर्णता है, और क्योंकि वो खंडित होता नहीं है, पूर्णमेवा वशिष्यति, उसके अगर दो पीस भी कर लोगे तो दोनों पूर्ण ही होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान का पीस ऐसा नहीं बोला, पूर्ण आधा है, अगर आधा भी किया जाए तो जो बच जाएगा वो भी पूरा है और जो आधा हुआ है वो भी पूरा है। तो यहाँ पर भी बहिरंगा शक्ति जो है भगवान की प्रकृति जो है उसमें भी भगवान पूर्ण है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्ण अंश के विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा है। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि वो सबके परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है 10.42 जिसमें भगवान ने बताया था, सॉरी 10.41 में भगवान ने कहा, यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वम् श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवाव गच्छत् त्वं मम तेजोंश संभवम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक सफुलिंग मात्र से उद्भूत होती हैं। यही चीज को श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्न अंश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। इसलिए यहाँ पर श्लोक में क्या बताया गया है, यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततः सर्व स्वकर्मणा तमभ्यर्थ, उसकी पूजा करनी है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें जानना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि अपने अंश की सेवा करना। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं के भी परमात्मा है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर के भिन्न अंश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है। इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, अब भगवान जो है वो भक्ति के विषय में बता रहे हैं कि आपकी भक्ति करना ज्यादा जरूरी है। आप अपने स्वकर्म का पालन करते रहो, भले स्वधर्म जो है उसको करो, लेकिन स्वधर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करना अति अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति को, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म के कर्म में प्रवृत्त किया गया है। वास्तव में भगवान के द्वारा ही हमने जो कार्य हमें मिले हैं, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हमारा स्वभाव है, वो भगवान की कृपा से, भगवान की दया से ही ये सारे हम इस जगह पर हैं। अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसके फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। अब आप अगर ब्राह्मण हो और ब्राह्मण के जरिए आपको जो भी कार्य मिल रहे हैं, तो उसमें क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में आपको जो भी फल मिल रहा है उस फल से भगवान की पूजा करनी आपको। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावनामयी होकर सोचता है तो वह भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहे हैं श्री प्रभुपाद जी, और भगवान ने बता दिया कि अपना कार्य करो और सेंटर में मुझे रखो कि भाई ये, क्योंकि ये सब आपकी वजह से भगवान, जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ भी मेरे पास है वो सब आपने दिया है, मैं स्वयं, मेरा अस्तित्व आपकी वजह से है, तो मेरा कार्य, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी पूजा करूं। तो यहाँ पर तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यही जीवन की सिद्धि है। अब ये भगवान ने क्या बताया है, सिद्धि विंदति मानवा, तो मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है अपने कार्य करते करते, ये सोचकर कि भगवान की कृपा से है और मुझे भगवान की भक्ति करना ज्यादा जरूरी है और अपने स्वभाव के अनुसार तो कार्य करने ही होंगे। भगवान ने भगवत गीता में 12.7 में कहा, 6 और 7 श्लोक को यदि हम इसके साथ टच करते हैं तो ऐसे है, भगवान ने कहा है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामः समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामिना चिरात् पार्थ मैया वेशित चेतसा। अर्थात जो अपने सारे कार्यों को मुझे अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से अति शीघ्र उद्धार करता हूँ। तेषाम अहम् समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर, यानी अपने अपने कार्यों को भगवान को अर्पित करना, उनके जो फल हैं वो भगवान को अर्पित करना और अपने हृदय में भगवान की भक्ति कर, भगवान का ध्यान करना, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर श्री पापा जी बता रहे हैं, तेषाम अहम् समुद्धर्ता, परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं, यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस प्रवृत्ति पर परख कार्य में लगा हुआ हो, यानी कि जो भी हो, भले उसका स्वभाव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसी चीज को भगवान ने बताया, सिद्धिम विंदति मानवः, मनुष्य अपना अपना कार्य करते हुए भी यदि भगवान की भक्ति करता है तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।